Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Pushpadan's Kaivalya Upanishad in Hindi, presented by Swami Acharya Swami Sri Bhagavatanand Ji. Thank you. Om Namah Shivaya.
वालादिष्वपि जागृदादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्ता स्वनिवर्तमानमामीत्यन्तस्फुरन्तम् सदा स्वात्मानम् प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदम् श्रीदक्षिणामूर्तये अद्वैतवीथि समुपासकैर्वै अद्वैतवीथि समुपासकैर्वै स्वानन्दसिंहासनलब्धदीक्षा हठेन केनापि वयम् षठेन दासीकृतागोपवधूविटेन परम प्रेमास्पद परमात्मस्वरूप वेद तीन भागों में विभक्त किया गया, मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग और आरण्यक भाग। तो दो भाग जो मंत्र भाग और ब्राह्मण भाग है, इसमें तो प्रेय विद्या है, इसमें गंधर्व और कंदर्प विद्या का भी वर्णन है। अच्छे अच्छे सुख भोग मिलें, अच्छे अच्छे पशु हों, आराष्ट्रे राजन्या, ये पंडित लोग पढ़ते हैं प्रायः। अब तीसरा भाग जो अरण्य में लिखा गया है, अरण्य माने होता न रणनम कोलाहलो भवति जत्र, जहां किसी प्रकार का कोलाहल नहीं, शांत वातावरण है, ऐसे अरण्य में लिखे जाने वाले उपनिषद है, जो कि उपनिषदों की संख्या लगभग 108 मानी गई, जिसमें कि 11 उपनिषदों में भाष्य लिखे गए हैं, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज वगैरह आचार्यों ने लिखे हैं, और 9 उपनिषद में भगवतपाद शंकराचार्य जी ने भी अपनी लेखनी चलाई, बहुत बढ़िया शंकर भाष्य लिखा। शंकराचार्य जी महाराज ने और भी बहुत से, जैसे विष्णु शास्त्र स्तोत्र पर भाष्य लिखा है और कई स्तोत्र स्तुतियां भी की हैं, भक्ति की भी उनमें कोई कमी नहीं है। तो इस प्रकार से एक कैवल्य उपनिषद उन्हीं में से है। इस पर भगवतपाद शंकराचार्य का यद्यपि भाष्य नहीं है, लेकिन बड़ी सुगम सुबोध और साधकों के लिए है ये। प्रारंभ में कैवल्योपनिषद पढ़ने से साधक के जीवन में साधना तो होगी ही, जैसे कि आपने सुना कि पहले साधन बहुत थे, साधना बहुत थी, साधन कम थे, और अब साधन बहुत है, साधना कम हो गई। तो ये कैवल्य उपनिषद एक ऐसी उपनिषद है, सुगम सुबोध सरल सहज में ही वेदांत का ज्ञान करा देती है। तो उसमें से जो 80,000 मंत्र तो अकेले कर्मकांड के हैं और 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, अब बचे 4,000 मंत्रों में ये उपनिषद है। इस उपनिषद का नाम ब्रह्म विद्या है और इसीलिए आपने देखा होगा उपनिषदों में बीच बीच में उपासना का भी प्रकरण आया है, कहीं ये न सोचें कि उपासना है ही नहीं। मनु ब्रह्म है, विद्युत ब्रह्म है, बृहदारण्यक में बहुत स्पष्ट आया, छांदोग में भी है। तो इन उपनिषदों में भी उपासना का वर्णन है, लेकिन क्रमशः धीरे 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 बढ़े हैं अपनी अंतर की ओर। तो एक बाह्य विस्तार होता, एक अंतर विस्तार होता। तो उपनिषदों में अंदर का खोला गया है। प्रायः ऐसा होता है कि हम दूसरे को ढूंढते रहते हैं। एक सच्ची घटना आपको सुनाएं। एक सज्जन बंबई से लखनऊ के लिए चले, उनके पास कैश काफी था और उसी क्लास में टिकट लेकर के चोर भी बैठ गया। अब उसने भुसावल तक देखा, जब नहीं मिले तो दूसरे को बेच दिया, 20,000 में उसने खरीद लिया। एक झांसी तक आया, तीसरे को फिर 30,000 में खरीद लिया। अब वो सेठ जी खरीदे तो जा रहे हैं, पैसा मिलता नहीं है। तो जब लखनऊ आने वाला हुआ तब चोर ने कहा कि भैया मैं चोर हूं और मुझे गंध आ रही है, तुम्हारे पास नोट है खूब, ये कहां हैं, हम तो तुम्हारी देह भर देख डाली। उसने कहा कि अच्छा बताते हैं, रुपया तो है हमारे पास, ये बात तो खैर सही है। तो कहा कैसे आप रखे? बोले देखो ऐसा है, हमने इसके 3 विभाग किए थे और 3 विभाग में हमने ये सोचा कि आपकी रहन गहन से देख के हम ये तो समझ गए कि चोर। तो हम क्या करते थे, जब तुम जाते थे बाथरूम तो हम तुम्हारे पैंट में नोट डाल देते थे और इत्मीनान से मैं सो जाता था रात भर। आप देखते थे हमको, हमारी अटैची को, हमारे झोला को, हमारे शरीर भर को, और हम बनियान अंडरवियर में सोते थे। तो कहा कि गजब हो गया, हमारे पैंट में? बोले हाँ, तुम्हारे पैंट में पड़ा रहता। बोले गजब हो गया, हम लोग और हमारे भैया लोग, हमने तो तुम्हें 30,000 में खरीदा है, हमने अपना पैंट कभी देखा ही नहीं, हमने सोचा उसमें कहां से आया, और आपकी ये बुद्धिमानी तो हमने आज पहले जानी। तो अपना पैंट कोई देखता नहीं, दूसरे के में देखते रहते हैं। आप लोगों की भले आदत न हो, तो अपना पैंट का मतलब अपने अंदर क्या क्या है, इंद्रियां क्या हैं, मन क्या है, बुद्धि क्या है, इनका प्रकाशक मैं हूं, तो मैं कौन हूं, आखिर हुए माई, ये कभी कभी सोचने को मिलता है। ज्यादातर हम बाहर जगत को देखते रहते हैं और प्रेय का वर्णन करते हैं। प्रेय और श्रेय दो मार्ग हैं ना, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं, उनमें अगर बंटवारा करना चाहो तो 2 ही रह जाएंगे, एक प्रेय एक श्रेय। तो प्रेय का वर्णन इसलिए भी बहुत है कि वेदों में प्रेय का ज्यादा वर्णन है, चाहिए भी। जैसे आपने सुना कि भगवान से बहुत कुछ चाहिए, भगवान को तो बिरले ही लोग चाहते हैं, आप जैसे लोग, भगवान से चाहिए। और वही नुस्खा है जो भगवान के लिए था, वही आपका दुनिया में लग गया। दुनिया वाले आपसे चाहते हैं, आपको कोई चाहते नहीं। तो अब ये कैवल्योपनिषद भी बिल्कुल और औपनिषदों की तरह है, गुरु परंपरा की है। इसमें मैंने इसलिए सुनाया, उपासना कांड का वर्णन है। उपासना भी बड़ी महत्व की है क्योंकि उससे चित्त शुद्धि होती है। जब आप जानते हैं कि हमारे अंतःकरण में मल, विक्षेप और आवरण, ये 3 दोष रहते ही हैं हमेशा, इनको शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। और वो शुद्ध होंगे स्तुति से ही, उपासना से ही। उपमाने पास में, पास माने बैठना, किसी इष्ट देवता के पास जब आप बैठेंगे तो वो शुद्ध होगा। इसलिए शुद्ध होना बहुत जरूरी, इसके लिए भक्ति बहुत जरूरी। भक्ति माने प्रेम, अपने इष्ट देवता के प्रति, अपने देवता के प्रति प्रेम जोड़ रहा है। ये रोज आप सुन लेते हैं कि प्रकृति जो संसार है, अपरा प्रकृति, क्षर कहो अपरा प्रकृति कहो, तो वो ये सारा भूत मात्र सब क्षर प्रकृति है। इस प्रकृति में हमारा स्वाभाविक राग जुड़ गया है। अब वो राग कैसे निवृत्त हो, इसके लिए जगतपति जो प्रकृति का मालिक है उसके प्रति अनुराग जुड़ जाए। तो जब अनुराग जुड़ जाएगा तो अपने आप राग हट जाएगा। अनुराग जुड़ना चाहिए। कभी कभी आप लोग कहते हैं कि भगवान में मन नहीं लगता, अब क्या करें, माला क्या करें, जब क्या करें, स्तुति, जब मन ही नहीं लग रहा। और हम कहते हैं कि मन लगे चाहे न लगे, आप तो लगो, मन तो आपका है ना। कहते हैं आप हमारा मन नहीं लगता, तो आप तो लगो कम से कम। तो आप लगोगे तो मन भी कुछ दिन बाद लगने लगेगा। तो मन के पीछे आप थोड़ी हैं, आपके पीछे मन है, आप प्रकाशक हैं। मन आपने किया कि चलो सत्संग में चलें, देखो इतनी जल्दी आ गए, तो इसका मतलब मन तुम्हारे आर्डर में है, तुम्हारे आदेश में है, तुम्हारा नौकर है। तो नौकर के बस में थोड़ी हो जाना चाहिए। तो प्रेय का वर्ण वेद में इसीलिए किया गया कि उपयोगी ज्यादा है लोगों के दृष्टि में। और ये है उपनिषद भाग श्रेय का वर्णन। तो आपने ये तो देखा ही होगा कि अश्वल गोत्र में उत्पन्न वाले अश्वलायन जो थे वो चतुष्ट साधन संपन्न होंगे, ये तो आप अनुमान ही लगा सकते हो। और दूसरी बात, उन्होंने अध्ययन भी किया था और ऋग्वेदी ब्राह्मण थे अश्वलायन। एक कर्म कांड में खूब कुशल, उपासना कांड में खूब कुशल। तो ऐसा इसीलिए अथ शब्द का प्रयोग किया गया। अथ माने इसके बाद, जब ये कर्म कांड, उपासना कांड और चित्त शुद्ध हो गया, तो कायदे से तद विज्ञानार्थम सा गुरुमेवाभिगच्छेत। गुरुम एवाभिगच्छेत, जो एव है अवधारणार्थक है, ये सब में जुड़ेगा। माने गुरु की ही शरण जाना चाहिए, गुरु में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि तद विज्ञानार्थम, उस परम तत्व को जानने के लिए आवश्यक है गुरु चरणों में उपस्थित होकर के, और उनसे ये पूछी जाए बात। अकेले जो ज्ञान मार्ग के हैं और उपासना का खंडन करते हैं, ऐसा उपनिषद का अर्थ नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा, जे ज्ञान मान बिमत तौ भौ, भौ भय हरनि भक्ति न आदरी। जो लोग ज्ञान में मतवाले हो चुके हैं, ज्ञान मान बिमत तौ भौ भय हरनि भक्ति न आदरी, उनका क्या हाल होता है? बोले, पाए सुर दुर्लभ पदार्थ परत हम देखत हरी। वो सुर दुर्लभ पदार्थ को प्राप्त करके भी गिरे हैं नीचे। ये कई ऐसे उदाहरण हैं। इसलिए भक्ति का भी आदर करना चाहिए, उपासना का भी आदर करना चाहिए। उपासना और ध्यान ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। कोई राधा जी के मंदिर में गया होगा तो देखा होगा, बहुत सीढ़ियां हैं बरसाने में, और वो सीढ़ियों पर कोई कहे कि बेकार हैं, इको का करेंगे, ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच जाए। तो कैसे पहुंच जाओगे भाई, जब एक एक पर पैर रखोगे, धीरे 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 चलते चलते तब न जाओगे। अब अश्वलायन जी महाराज ने ब्रह्मा जी के पास प्रश्न किया और प्रश्न होता है दो प्रकार का। एक प्रश्न हृदय से होता है, श्रद्धा संपन्न होता है, और साधन श्रद्धा साधन संपन्न होता है, और एक बुद्धि से होता है जो तर्कपूर्ण होता है। तो तर्कपूर्ण का तो प्रश्न का समाधान मिलना मुश्किल है, ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं मिलता है, मुश्किल है, थोड़ा कठिन है। लेकिन हृदय से, भक्ति से, श्रद्धा से, साधन संपन्न जिज्ञासु जब गुरुजी के पास प्रश्न रखता है तो वो जरूर गूढ़ूत तो न साधु दुरावही काहे, बोले आरत अधिकारी जहां पावही। जहां सचमुच में अधिकारी समझ लेते हैं फिर वो दूर नहीं करते। गूढ़ू तत्व न साधु दुरावहीं, आरत अधिकारी जहां पावे, आरत अधिकारी होना चाहिए। उसको मालूम पड़ेगी हां सचमुच में जिज्ञासु है ये, और जिज्ञासा से भरा है, इसे चाहिए जवाब। क्योंकि अंतकरण में जो अशुभ कर्मों के पाप भरे हैं, यूं तो पाप पुण्य किसी ने देखा नहीं कि काला है कि गोरा है कि लंबा है कि चौड़ा है, ऐसे अंदाज लगाते। जिस कर्म से भय और ग्लानी होए वो अशुभ कर्म है, या तो चोर पकड़ ले, चोर राजा पकड़ लेगा, पुलिस पकड़ लेगी, या ग्लानी हो अरे राम राम। तो भय और ग्लानी जहां होती है, और पाप वो पाप होता है, और पाप का फल दुख होता है। तो यदि जीवन में दुख से आत्यंतिक निवृत्ति चाहिए तो आप ये अपने आप अर्थ लगा लोगे तो पाप से दूर होना चाहिए, क्योंकि पाप का तो फल ही दुख है, और दुख कोई चाहता नहीं है क्योंकि आनंद स्वरूप है अपना, विपरीत चीज नहीं चाहता। तो पाप का फल दुख है, और दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाए, और आत्यंतिक निवृत्ति तभी होगी जब आप श्रेय का वर्णन करेंगे, और श्रेय का वर्णन तभी होगा जब आप गुरु चरणों में उपस्थित होंगे, और गुरु जी तभी बताएंगे, रहस्य खोलेंगे जब आप साधन संपन्न होंगे। गूढ़ तत्व न साधु दुरावय, याज्ञवल्क जी भरद्वाज जी के संबंध में आया। भरद्वाज जी ने बड़े विनम्रता पूर्वक पूछा कि नाथ एक संशय बड़ मोरे, कर तल वेद तत्व सब तोरे। वेद का जो तत्व रूप है वो आपके करतल में है, ऐसा समझ करके महाराज मुझे संदेह हो रहा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करतल वेद तत्व सब तोरे। लेकिन कहत मोही लागत भय लाजा, और कहे नहीं तो होई अकाजा। कहते तो हमें बड़ा लज्जा लगती है, कई लोगों से प्रश्न करो तो भाई करो कुछ पूछ लो तो उनको ये लगता है कि पड़ोस वाला कहेगा अरे तुम्हें ये भी नहीं आता, तो इस लज्जा से संकोच से प्रश्न नहीं करते। परमार्थ निकेतन में जितने दिन हम रहते हैं प्रायः प्रश्नोत्तर ही होता है, तो वहां लिख के प्रश्न करता है और वो प्रश्न ऑफिस में दे दिए जाते हैं, और उस समय वो ऑफिस का एक व्यक्ति आकर के प्रश्न सुनाता जाता है। तो हमने देखा कि वो जो प्रश्न है बड़े मार्मिक, बड़े हृदय स्पर्शी, बड़े साधन संपन्न प्रश्न होते हैं, क्योंकि भारत भर सब जून में वहीं पहुंच जाता है। तो ये प्रश्न करने का एक ढंग देखिए कैसे सुंदर ढंग से, महाराज संदेह तो है लेकिन हमें कहने में भय लगता है, और नहीं कहेंगे तो संत कहीं असनीति श्रुति पुराण मुनि गाव, हो ही ना बिमल विवेक उरो गुरु सन करें दुराव। गुरु जी से अगर दुराव किया जाएगा तो विमल विवेक नहीं हो सकता। इसलिए विमल विवेक के लिए हमें चाहिए कि हम स्पष्ट करें। ऐसे आसुलायन जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, और गुरु जी भी ऐसा हो, संत दो प्रकार के होते हैं, एक ब्रह्मनिष्ठ होते हैं और एक चमत्कार निष्ठ होते हैं। तो सामान सम्मान अगर जगत से चाहिए, सामान और सम्मान ये दो चीजें जगत से मिलेंगी, भगवान नहीं मिलेगा। और भगवान को अगर चाहोगे तो सामान और भगवान तीनों मिलेंगे। आप कई बार सुन चुके भाई गेहूं बोओगे तो गेहूं भी मिलेगा साथ में भूसा भी मिलेगा। अब खेत भर में भूसा ही बोया हो तो न गेहूं न भूसा। तो सामान और सम्मान चाहिए, प्रेय चाहिए अगर तो फिर भगवान दूर है। और भगवान अगर चाहिए, श्रेय चाहिए, तो फिर सामान और सम्मान अपने से आएगा। इसलिए श्रेय का वरण करना चाहिए, ऐसा समझ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। अब प्रजापति हैं और पितामह हैं, पितामह ने बाप के बाप के बाप के बाप और गुरु के गुरु गुरु। काहे भाई, पितामह जो ब्रह्मा जी हैं, उन्होंने सृष्टि करी, तो उन्होंने पहले सनकादिकों को बताया, नारद जी को बताया, फिर धीरे धीरे ज्ञान और आगे बढ़ा। अब जैसे आपने बताया, बतावे ही ना कोई तो फिर आगे परंपरा ही टूट जाएगी। इसलिए जीवन मुक्त महापुरुष रहते हैं संसार में, नहीं तो जिस दिन उन्हें विज्ञान हुआ, ज्ञान हो गया मैं आत्मा हूं, देह नहीं हूं, उसी दिन वो देह छोड़ दें। लेकिन उस देह से संसार में उपकार होता रहता है। कई बार आपने सुना, संत आधार देते हैं, हनुमंत उपकार देते हैं और भगवंत प्यार देते हैं। उनके पास और है ही का, अपने में मिला लेते हैं, ये नियम है। हनुमान जी हमेशा उपकारे देते हैं और संत आधार देते हैं। जैसे कोई डूब रहा हो, उसको जरा सा कुछ आधार मिल जाए तो बच जाएगा। तो अब आसुलायन जी जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, भाई संपन्न तो है ही हैं, अब ज्ञान के आगार हैं। ब्रह्मा जी से पूछा कैसे गए, तो एक बड़ा बढ़िया शब्द है, उपसमेत्य शब्द है। आसुलायन जी ऐसे नहीं पहुंच गए, बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, बड़े आदर से। तो तीन अंतरंग साधन और तीन बहिरंग साधन,